नमस्कार सोतो छिंगड़ाओ वाले आपका दोस्त योगेश। आज हिंदी दिवस है। जो भारत में एक सबसे प्रचलित भाषा हिंदी है, जिसके माध्यम से एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से हिंदी में हर शब्द सुनता है, जिंदगी में अपनी सबसे पहली आवाज हिंदी में सुनता है। और आज हिंदी दिवस पर आज हमारे साथ लोहियावादी गांधीवादी प्रोफेसर डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए हैं। अनुप सर, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
उमेश भाई नमस्कार, हिंदी दिवस पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
जी सर, सर हिंदी दिवस की प्रासंगिकता पर आप किस तरीके से सर इस पर प्रकाश डालेंगे सर?
हिंदी दिवस की जो प्रासंगिकता है, यह केवल एक दिन की प्रासंगिकता नहीं है बल्कि आने वाली सदियों तक की प्रासंगिकता है। और हिंदी तो हम भारतवासियों की जीवन है। अगर हम हिंदी को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने का प्रयास करें तो हम भारतवासियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब तक हिंदी है तब तक हम भारतीयों की जिंदगी है, इससे बड़ा हिंदी के लिए प्रासंगिकता नहीं हो सकती। और हिंदी भाषा पूरी तरीके से एक जनतांत्रिक भाषा है जो अपने अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करती है। इसके अंदर सारी समग्रताएं है, इसके अंदर हर संभावनाएं है, इसके अंदर हर की हर समस्या का समाधान है, तो इससे बड़ी तो कोई प्रासंगिकता हो ही नहीं सकती है। परंतु आज देखा जाए, हम लोगों के जो नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि जन जन की है ये अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पक्षधर थे। वो लोग भी चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। और जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी पहली साक्षात्कार दे रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को। उन्होंने बोला कि दुनिया को बता दो कि गांधी अब अंग्रेजी बोलना भूल गया है, क्योंकि वह जानते थे कि किसी देश का विकास उसके अपने निजी भाषा में ही हो सकता है। उसके बिना अगर कोई पराई भाषा को अपनाया जाए वह देश विकसित नहीं हो सकता है। वह देश मूल रूप से कुछ मानों में आर्थिक मामलों में विकास कर सकता है, व्यापारिक मामलों में विकास कर सकता है, लेकिन सांस्कृतिक सभ्यता और जीवन के मूल्यों के मायने में विकास नहीं कर सकता। ये हमारी हिंदी की प्रासंगिकता ही है जो पूरे भारतीय को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बांध करके रखती है। और दूसरी जो बात ये है भाई कि हिंदी के साथ साथ जो हम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं भी है वो हिंदी के छोटी बहन के समान है। उन भाषाओं का भी हमें सम्मान करना है, उन भाषाओं को भी हमें हिंदी के साथ लेकर के चलना है, और ये सारी बातें हिंदी भाषा के अंदर सम्मानित है।
सर, आजकल हर माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने के लिए तत्पर रहते हैं, क्यों सर?
जी देखिए, जो माता पिता बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, भेजते हैं, मेरे भी बच्चे वो भी जा रहे हैं उस मीडियम में पढ़ने के लिए है। लेकिन देखा जाए तो आज इंग्लिश के जगह पर ही इंग्लिश आ गया है, और यह एक प्रकार से षड्यंत्र है कि हिंदी को किस प्रकार से समाप्त करके किस प्रकार से लोगों को वैचारिक विकलांग बनाया जाए, किस प्रकार से लोगों की सोचने की क्षमता को समाप्त किया जाए। एक साम्राज्यवादी नौ साम्राज्यवादी ताकत और कारपोरेट की एक सोची समझी चाल है जो एक देश की संस्कृति और सभ्यता को खराब करना चाहते हैं। इंग्लिश शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप देखिए कि माता पिता अपने बच्चों को बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, और वो अक्सर भाषाओं को तोड़ फोड़ कर प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि बेटा शख्स पहन लो, तू पहन लो, इसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये जो भाषा है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और तो कुछ लोग इस प्रकार से लाभिया बन गई है जो भाषा के खिलाफ, बोलियों के खिलाफ काम करने लगे, भाषाओं को कभी बोलियों से तुलना करने लगे, कभी बोली की भाषाओं से तुलना करने लगे, उसको समाप्त कर दे। हमारा यह कहना नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में न पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाइए, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी को नकारने का प्रयास न करिए, हिंदी को तोड़ने का प्रयास न करिए, क्योंकि अगर हिंदी टूट जाएगी तो आपका जीवन टूट जाएगा। अगर आप अंग्रेजी भाषा को महारानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदी को दासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने मूल चरित्र और मूल संस्कृति को दासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल एक भाषा को नहीं कर रहे। और अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा नहीं है। जब जो दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा है, अंग्रेजी पूरी दुनिया की भाषा नहीं है, कुछ लोगों की भाषा है। इवन के एक सर्वे हुआ था उसमें इंग्लैंड में भी लोगों ने अंग्रेजी का विरोध कर दिया था, उन्होंने अंग्रेजी बोलना मना कर दिया था, वो बोले कि नहीं हमारे यहाँ जो जो क्षेत्रीय भाषा है उससे काम करेंगे। दुनिया के तमाम विकसित देशों को देख लीजिए, चीन को देखिए, फ्रांस को देखिए, स्पेन को देखिए, ये सब अपनी अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं। जापान को देखिए, वो अपने भाषा में काम कर रहे हैं, दूसरे के भाषा को अपनाए नहीं। लेकिन एक भारत ही ऐसा देश बनता जा रहा है जो अपनी भाषा को छोड़ करके पराई भाषा के प्रति बड़ा ही लालायित है और बड़ी तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात आज देख लीजिए कि आज जो कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, कितनी बड़ी विडम्बना है कि आज बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि हमारे यहाँ इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश सिखाई जाती है, अमेरिकन इंग्लिश सिखाई जाती है। इसका मतलब क्या है योगेश भाई? अब देखिए कि आज जो भारत के नौजवान अंग्रेजी बोल रहे हैं वो अटक अटक करके अंग्रेजी बोल रहे हैं। जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो मैंने अटक अटक के अटकल वो अंग्रेजी बोलते हैं, और ऐसे हमारा मानना ऐसे करने लगते हैं। तो ये तो एक भाषा का नकल आप कर ही रहे हो, उच्चारण का भी नकल कर रहे हो। अब इससे बड़ी गुलामी का प्रतीक क्या हो सकता है? इससे बड़ी मानसिक गुलामी का क्या हो सकती है क्या भाषा के साथ उच्चारण का भी नकल करने लगे हो? यह कहीं ना कहीं हमको विकृति की तरफ लेकर के जा रहा है। उससे बढ़िया अगर आप हिंदी सीखते बढ़िया हो जाता, क्योंकि हिंदी में संभावनाओं की कमी नहीं है।
सर 1924 से 1926 के बीच में भगत सिंह और उनके संगठन के साथियों ने देश की आजादी के साथ साथ भाषा को लेकर भी, उन्होंने भाषा से किस तरीके से स्वतंत्रता मिले इस पर संघर्ष को लेकर हुकूमत के सामने ऐसे कुछ मांगे रखी थी कि हमको भाषा से भी स्वतंत्रता चाहिए। तो सर अब तक के इसको किस तरीके से देख रहे हैं? 1924 से 1926 के बीच में उन्होंने भाषा की स्वतंत्रता को लेकर भी एक बहुत बड़ा मांग की थी।
जी जी, आप देखिए पूरे आजादी की लड़ाई को उठा करके देख लीजिए, तो जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो तो हिंदी भाषी बेल्ट में तो नहीं लड़ी जा रही थी, तो हिंदी भाषी बेल्ट के लोग तो गुलाम नहीं थे, पूरा हिंदुस्तान गुलाम था। दक्षिण भारत से लेकर के कन्याकुमारी तक आप चले जाइए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आ जाइए, तो पूरा देश गुलाम था उस समय, सारे भाषा के लोग गुलाम थे, सारा क्षेत्र उसमें गुलाम था। लेकिन केंद्र में अगर कोई भाषा खड़ा होकर के लड़ रही थी तो हिंदी थी। जो क्रांति के केंद्र बने वहां पे जो भी नेता आए, चाहे बंगाल के नेता निकले, चाहे उधर दक्षिण भारत के निकले और चाहे उत्तर भारत के निकले, वो सभी लोग हिंदी जानते थे। ठीक है, हिंदी अगर ठीक से नहीं जानते थे लेकिन इतना तो जानते थे कि वो समझ सकते थे। भगत सिंह हिंदी जानते थे, भगत सिंह अंग्रेजी जानते थे, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह चाहते थे कि हिंदी का पसीदर हो, हिंदी अपनी भाषा में लड़े, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई स्वतंत्रता की उसके मूल में हिंदी खड़ी थी। सारे नेताओं के संचार का माध्यम था, सारे नेताओं को समझने का जो माध्यम था वो हिंदी थी। अगर उस समय भाषा को लेकर के वो समझ गए थे कि अंग्रेज कुटिल चाल चलते हैं, अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो और राज करो, तो भगत सिंह और उनके साथी समझ रहे थे कि अगर भाषा के सवाल पर अंग्रेजों ने फूट डाला तो एक नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा और हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भाषा को बात करके रखा और कहा कि एक भाषा ही हमारे सब होना चाहिए, भाषा के आधार पर भी हमारा आंदोलन होना चाहिए, और उन्होंने एक भाषा को लेकर के लड़ने का प्रयास किया। लेकिन उनके आंदोलन में देखिए कभी क्षेत्रीय भाषाओं को नकारा नहीं गया था, हर क्षेत्र के लोग आकर के लड़ रहे थे, लेकिन हिंदी की स्वीकार्यता थी, हिंदी की सर्वोत्तमता थी। परंतु आज देखिए, आज जो कहा जा रहा है कि नहीं हिंदी के साथ अगर हिंदी को हम ला रहे हैं तो हमारे देश के लोगों पे एक अतिरिक्त भाषा का बोझ हो जाएगा, या एक टोटली भ्रम पैदा करने की तरीका है। ये एनजीओ का और एक साम्राज्यवादी शासकों का एक भ्रम है कि हिंदी को किस प्रकार से हटा दिया जाए। हिंदी को हटा करके आप किसी चीज का विकास नहीं कर सकते। हाँ, अगर वास्तव में विकास करना है देश का तो हिंदी प्राथमिक भाषा बने और जो क्षेत्रीय भाषा बने वो हिंदी के साथ चले। हम लोगों का तो यह मानना है कि आप इंग्लिश के जगह पे जो इंग्लिश की अनिवार्यता कर रहे हो उसके जगह पे हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की भाषा को अनिवार्य कर दो। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में है तो हिंदी के साथ मराठी को अनिवार्य करो, अगर आप दक्षिण भारत में कन्नड़ में है तो वहाँ कन्नड़ भाषा को कर दो, मलयालम को हिंदी के साथ कर दो, इंग्लिश को कमजोर करो, इंग्लिश को कम करो, ताकि लोग व्यापकता के साथ जुड़ सके, व्यापकता के साथ काम कर सके। और यह कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदी में रोजगार नहीं है। भाई कोई भी देश जब अपने भाषा में काम करेगा तो रोजगार क्यों नहीं होगा? आज तो रोजगार इसलिए सिमटता जा रहा है, इसलिए कम होता जा रहा है कि लोग अपनी भाषा से ही दूर होते जा रहे हैं और सारे जो चीज आ रहे हैं वो अंग्रेजी में आ रहे हैं। तो अगर सारे व्यापार के माध्यम को, सारी चीज को अंग्रेजी में कर दिया जाए तो क्या उससे व्यापार, क्या उससे व्यवसाय नहीं बढ़ जाएगा, क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा? दूसरी बात, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है या हिंदुस्तान से संबंध तोड़ना चाहेगा, तो अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की न्यायपालिका यह कह दे कि हमारे यहाँ के सारे काम हिंदी में होंगे, तो उससे भी एक रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी और दुनिया का कोई देश इसे नकार नहीं सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी की दो योजना देख लीजिए, मेक इन इंडिया और कैशलेस प्रणाली, ये टोटली अंग्रेजी में है, अगर इसको हिंदी में कर दिया जाए तो उससे अपार संभावनाएं बढ़ जाएगी। तीसरी जो बात है कि जो सरकारी काम हो रहे हैं, जो भी सरकारी लेटर निकले, जो भी सरकारी काम हो पूरे इंडिया के, वो हिंदी में हो। चौथी जो न्यायपालिका के जो कार्य चल रहे हैं अंग्रेजी में, उनको बदला जाए, जो जज डिसीजन लिख रहे हैं, जो निर्णय दे रहे जज, और उसको भी हिंदी में किया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक समझ सके। अधिकांश तो सोशल न्यायपालिका में इसलिए हो जाता है योगेश भाई कि लोग भाषा को ही समझ नहीं पा रहे कि न्यायपालिका की भाषा क्या है, जो अंग्रेजी में लिख देते हैं समझ में नहीं आता है आम लोगों को, वहाँ पे सोशल हो जाता है, वहाँ पे सोशल का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो अगर न्यायपालिका का भी निर्णय हिंदी में आने लगे या सारे काम हिंदी में होने लगे तो सोशल से बच जाएंगे और लोग अधिकांश भाषा को समझने लगेंगे। तो 1924 में भी सर्वव्यापकता थी और उस व्यापकता को गांधी जी समझते थे, डॉक्टर लोहिया समझते थे। तब तो आजादी के बाद लोहिया ने कहा कि चले देश में देसी भाषा, एक देश की भाषा हो, एक देश की परिभाषा हो, एक देश के अंदर सारी चीज देशज होने चाहिए। गांधी ने तो कहा कि हम अंग्रेजी बोलना भूल गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भाषा के आधार पर फिर से लड़ाई होगी तो पूरा देश एकत्रित नहीं हो पाएगा, कमजोर हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण न हो बल्कि प्रांतों का निर्माण हो, तो उसमें हिंदी जो है केंद्र में रहे, बाकी भाषाएं उसके इर्द गिर्द रहे। तो हम हिंदी के प्रासंगिकता को या हिंदी के सर्वव्यापकता को नकार नहीं सकते।
सर, क्या एक बच्चे के विकास में कोई भाषा किस तरह बाधा बन सकती है? सर
नहीं, बच्चे के विकास में तो अगर पढ़ाई भाषा रहेगी वो बाधा तो रहेगी ही रहेगी ना, जो भी पढ़ाई भाषा होगी वो बाधा बनेगी। अगर आज हमारे घर के बच्चों को कहा जाए कि आप अंग्रेजी बोलो तो नहीं बोल पाएंगे, उनके लिए 5-7 साल 10 साल तो बाधा रहेगी रहेगी, क्योंकि उसका उस प्रकार का पर्यावरण नहीं है ना, इन्वायरमेंट नहीं है घर में। हम हिंदी बोलते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, हम मराठी बोलते हैं, तो हमारे बच्चे के लिए तो अंग्रेजी जो है वास्तव में बाधा रहेगी ना। लेकिन अगर हम उसको हिंदी का माहौल दे, मराठी का माहौल दे, भोजपुरी का माहौल दे, तो उसके लिए बाधा नहीं रहेगी। इसलिए तो कहा गया है कि व्यक्ति का विकास जितना अपने भाषा में हो सकता है दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकता है, पढ़ाई भाषाओं में नहीं हो सकता है। तो एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो जब जन्म लेता है तो अपने वातावरण में जन्म लेता है, पढ़ाई वातावरण में जन्म नहीं लेगा। लेकिन पढ़ाए वातावरण, पढ़ाए भाषा, पढ़ाए आजकल तो हर चीज पढ़ाई हो गया है, उसको थोपा जाता है। तो जब थोपा जाता है तो थोड़ा सा असमंजस होता है और उसको समझने में 4-5 साल लग जाता है। कुछ लोग जल्दी समझ लेते हैं, कुछ लोग देरी से समझते हैं। तो इसके मतलब यह नहीं कि वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, बेकार नहीं होता है, थोड़ा सा विकास सीखता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर वो अपने भाषा में पूरी तरीके से काम करे तो उसका विकास दुगुना होगा, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा, बैंड बजाय इसके उसको दूसरी भाषा को उसके ऊपर थोपा जाए। दूसरी भाषा को थोपना मतलब उसको बैल बनाना होता है, उसको तेज बनाने का प्रयास है, उसकी बुद्धि को, उसकी कुशाग्रता को, उसकी तीव्रता को रोकना होता है।
जी सर। सर, क्या देश में सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य का साहित्य बहुत बड़ा है, पर क्या हिंदी साहित्य में पढ़ाई करने वाले बच्चों की निरंतर कमी हो रही है? तो क्या आने वाले दिनों में क्या हिंदी साहित्य जो इतना बड़ा है इसको पढ़ने वालों की भी कमी आप देखने को मिलेगी या देख रहे हैं? सर आप
भाई, आपका बात एकदम सही है, आपने एकदम सही सवाल उठाए है। आज देख लीजिए कि एक तरीके से पढ़ने वालों की भी कमी होती जा रही है और लिखने वालों की भी कमी होती जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विरासत की दुनिया में चले जाए, यह तो होना ही है, होगा भी होगा, लेकिन हमको अपने मिशन पे काम करना चाहिए, हमको अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए। भाई अगर सरकार चाह दे, सरकार और उसके साथ साथ आम जनमानस चाह दे कि हमारी जो आम भाषा है हिंदी, हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, हमें उसमें काम करना है, तो लिखने वालों को भी प्रतिसाद मिलने लगेगा और पढ़ने वालों को भी प्रतिसाद मिलने लगेगा, तो पुनः संख्या बढ़ने लगेगी। एक यह दौर चल रहा है जिसमें थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि बहुत सारा कम हो गया, लिखने वालों ने छोड़ दिए, पढ़ने वालों ने छोड़ दिए। लिखने वाले, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। आज लिखने और पढ़ने की जो बात है, जैसा ही आप देखिए तो हर भाषा के लिटरेचर पर मार पड़ी है, हर भाषा के साहित्य पर मार पड़ी है। उसका कारण रहा है कि युवा को आज एक ऐसे दिशा में मोड़ दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पैकेज बुमा व्यवस्था, यानी वो जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुमको कमाना है, तुमको पैकेज लेना है और बड़े बड़े पैकेज लेना है। उसके लालच में क्या होता है, वो दास के समान जिंदगी जीने लगता है, सीखने की लिखने की पढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, पहली बात ये। दूसरी बात, आज का जो युवा हो रहा है वो व्यवस्था का समर्थक हो रहा है, व्यवस्था बदलाव वाला नहीं होता है। साहित्य और विशेष करके हिंदी साहित्य और अपने क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को जो पढ़िए तो व्यवस्था बदलाव के पक्ष में भी साहित्य लिखी जाती है। आज जो साहित्य लिखी जा रही है वह भी व्यवस्था के पक्ष में लिखी जा रही है। बहुत कम ऐसे लेखक बचे हैं जो व्यवस्था के एगेंस्ट, व्यवस्था के विपरीत जाकर के लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेखकों में भी कुछ कमी आई है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में भी कमी आई है, जिससे कम पढ़ने वालों की संख्या हो रही है। तो यह तो एक घर के वातावरण को भी चाहिए कि हम एक पढ़ने लिखने का माहौल तैयार करें, हम अपने लिटरेचर के प्रति, अपने साहित्य के प्रति उसके लगन पैदा करें, जिज्ञासा को जगाए। आप देख लीजिए कि पुस्तक मेला लगता है, बड़े बड़े साहित्य की दुकानें होती है, वहाँ लोग माता पिता अपने बच्चों को ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वाटर पार्क में ले जाना चाहते हैं, वहाँ ले जाना चाहते हैं आजकल, जहाँ डांस हो रहा है, जहाँ पे नहाने को मिलता है, स्विमिंग पूल के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ खाने को कुछ मिल जाता है। उसकी अपेक्षा अगर माता पिता अपने बच्चों को ले जाने लगे साहित्यों में, पुस्तकालयों में, जहाँ जहाँ कहीं साहित्य सम्मेलन हो रहा है, जहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, तो देखिए उसके मस्त हर हो जाएगा। ये एक तरह तरीके से समाज में गिरावट आ रही है, लेकिन इस गिरावट से हमें निराश नहीं होना है। इस निराशा की जिंदगी को हमें तोड़ना है और आशा की जिंदगी में जाना होगा, हमें पुनः साहित्य की तरफ लौटना होगा। और पृथ्वी से कभी अच्छी साहित्य दूर नहीं होगी और लेखक भी दूर नहीं होंगे, बहुत सारे लोग लिख रहे पढ़ रहे, और हिंदी साहित्य कभी कम दूर नहीं होगी। इसका तो सर्वव्यापी क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको कोई दबा नहीं सकता है।
सर, क्या हिंदी साहित्य इतना बड़ा है और क्या आने वाले दिनों में इसको पढ़ने वाले लोगों की कमी के साथ साथ क्या शिक्षकों की भी कमी आने वाली है आने वाले दिनों में, ताकि बच्चों को भी स्कूल में हिंदी पढ़ने वाले टीचर ही ना मिले, कैसे देख रहे इसको?
ये संभावना की जा सकती है
जी,
इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये 100% हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जैसे कि आप कभी भी कहीं भी रहिए, किसी भी दिशा में रहिए, आप अपने संस्कृति से तो जुड़े रहेंगे, अपने साहित्य से तो जुड़े रहेंगे। सही बात, पढ़ने वालों की जो कमी होती जा रही है, मैंने पहले ही बोला कि आप देखिए कि हर चीज के पढ़ने वालों की कमी होती जा रही है। आज जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी भाषा पराई भाषा हो रही है, अंग्रेजी हो रही है। अगर उस टेक्नोलॉजी के भाषा को हिंदी में कर दिया जाए, उस तकनीकी को हिंदी में लाया जाए, तमाम काम हिंदी में होने लगे, कैशलेस जो प्रणाली चल रही है उसको अगर हिंदी में कर दिया जाए, तो क्या लोगों की संख्या नहीं बढ़ने लगेगी? अपन एटीएम चलाने जाते हैं तो उसमें भाषा का चयन करने को अपने को ऑप्शन देता है।
सर जी, मेरा अंतिम सवाल है, सर मेरा अंतिम सवाल है, कई राज्यों ने मेडिकल की पढ़ाई हो और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषी में शुरू की है, किस पहल को किस तरीके से देख रहे सर आप?
नहीं, ये बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में पढ़ने वाला ही डॉक्टर अच्छा बन जाएगा या कोई फॉरेन भाषा में पढ़ने वाला डॉक्टर ही अच्छा बन जाएगा, अपने भाषा में भी पढ़ करके डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि अंतिम समय में उसको इलाज तो अपने लोगों का ही करता है ना, उन्हीं पेशेंटों का इलाज करता है, उन्हीं मरीजों का इलाज करता है जो हिंदी बोलते, मराठी बोलते, मलयालम बोलते, भोजपुरी बोलते, ब्रजभाषी बोलते, वही बोलते हैं। उसके पास कोई फॉरेन से तो पेशेंट आते नहीं, एक दो पेशेंट आते होंगे, तो अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत जरूरी है, हिंदी की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। तो हम लोगों की तो मांग है कि सारे कोर्स हिंदी में किया जाए, उस टाइप का साहित्य और उस टाइप का व्यवस्था निर्माण किया जाए।
तो ये थे डॉक्टर रणु सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से हिंदी दिवस पर अपनी राय रखी, साथ ही हिंदी दिवस पर हिंदी की महत्वपूर्ण जानकारी और हिंदी के साहित्य पर अपना प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, और संपूर्ण देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
जी, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।